दिन भर तारीख 8 अक्टूबर दिन रविवार, मैं हूं वात्सल्य राय। स्पेन से कैटलोनिया की आजादी के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग, बार्सिलोना में प्रदर्शन। गुजरात में विकास को लेकर जारी राजनीतिक बहस में प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर पलटवार।
10 साल तक ऐसी सरकार आई जिसको विकास के प्रति नफरत थी।
और दिवंगत फिल्मकार कुंदन शाह ने बीबीसी के साथ साझा की थी दिल की बातें, सुनवाएंगे वो खास बातचीत।
सुधीर मिश्रा है और पंकज कपूर है और बाकी के सब एक्टर्स ने ठान ले ली कि या तो मर जाएंगे लेकिन इस बार इनकम्प्लीट नहीं छोड़ेंगे। जो 2 रात का शेड्यूल था वो हमने 5 रातों में खत्म किया।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, कुलदीप मिश्र से। कैटलोनिया के स्पेन से आज़ादी के ऐलान के आसार से पहले हजारों की संख्या में लोग इसके विरोध में और स्पेन की एकता के पक्ष में सड़कों पर उतरे हैं और स्पेन के झंडों के साथ बार्सिलोना की ओर बढ़ रहे हैं। हफ्ते भर पहले ही कैटलोनिया ने स्पेन से अलग होने पर विवादित जनमत संग्रह कराया था, जिसमें कैटलोनिया की सरकार के मुताबिक 90% लोग स्पेन से अलग होने के पक्ष में थे। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि जनमत संग्रह में आधे से भी कम लोगों ने हिस्सा लिया था। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वह अब तक चुप रहे बहुसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अलगाववाद के पक्ष में नहीं हैं। कैटलोनिया के अलग होने के विरोधी समूह कैटलन सिविल सोसाइटी के सदस्य होजे डोमिंगो ने कहा, यह कैटलोनिया और स्पेन या दोनों जगह के लोगों के बीच का संघर्ष नहीं है, यह मुख्य तौर पर कैटलोनिया के लोगों की समस्या है और हमें ही इसे यहाँ हल करना है। इसलिए हम प्रेसिडेंट कार्ल्स पुजडिमोन से अपील करते हैं कि वह नाजायज एक तरफा आज़ादी का ऐलान न करें, क्योंकि सबसे पहले इसका बुरा असर कैटलोनिया के लोगों पर ही पड़ेगा। ये थे होजे डोमिंगो के शब्द। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह की कंपनी के टर्नओवर को लेकर उठ रहे सवालों पर केंद्रीय रेल मंत्री और पार्टी के नेता पीयूष गोयल ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वेबसाइट द वायर में दुर्भावनापूर्ण रिपोर्ट छापकर अमित शाह की छवि खराब करने की कोशिश की गई है और इस संबंध में वेबसाइट के रिपोर्टर, संपादक और मालिक के खिलाफ 100 करोड़ रुपये की मानहानि का मुकदमा किया जाएगा। वेबसाइट ने एक रिपोर्ट में अमित शाह के बेटे जय शाह की कंपनी का टर्नओवर 3 साल में 16,000 गुना बढ़ने का दावा किया था। इस पर पीयूष गोयल ने कहा,
तो उन्होंने टाइटल दिया है गोल्डन टच ऑफ जय अमित भाई शाह। ये मिस्टीरियस टाइटल देके उन्होंने कोशिश की है कि अमित भाई का नाम खराब किया जाए। फोटो डाली अमित भाई की उसमें, इसका हम खंडन ही नहीं करते हैं। बेबुनियाद खबर को मैं समझता हूँ बहुत ही भद्दे तरीके से पेश किया गया और इसीलिए जय शाह डिफेमेशन का केस कल फाइल कर।
ये थे रेल मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। उत्तर कोरिया के शीर्ष नेता किम जोंग उन ने अपनी छोटी बहन को सत्तारूढ़ पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी है। किम यो जोंग उत्तर कोरिया की शीर्ष निर्णायक इकाई पोलित ब्यूरो की सदस्य बनाई गई हैं। किम यो जोंग को अपने भाई की सार्वजनिक छवि के लिए जिम्मेदार माना जाता है। किम का परिवार उत्तर कोरिया की सत्ता पर 1948 से काबिज है। अब से थोड़ी देर बाद क्यूबा के बड़े मार्क्सवादी नेता रहे चे गुवेरा की 50वीं बरसी पर होने वाले यादगार समारोह में हजारों लोग हिस्सा लेंगे। सेंटा क्लारा शहर में ये कार्यक्रम होंगे जहां उन्होंने क्यूबा क्रांति की निर्णायक लड़ाई लड़ी थी। आज ही के दिन 1967 में चे गुवेरा बोलिविया में अगवा कर लिए गए थे और एक दिन बाद यानी 9 अक्टूबर को उनकी हत्या कर दी गई थी। बोलिविया में भी कार्यक्रम हो रहे हैं लेकिन पुराने सैन्य कर्मियों ने इस लड़ाई में मारे गए बोलिवियाई सैनिकों के सम्मान में इस कार्यक्रम में शामिल न होने का ऐलान किया है। जर्मनी में अपनी गठबंधन सरकार बनाने के लिए चांसलर एंगेला मर्केल आज से अपनी कोशिशें शुरू कर रही हैं। उनकी पहली मुलाकात अपनी सहयोगी सीएसयू पार्टी से है। सीएसयू सीमा पर नियंत्रण के संबंध में सख्त रुख अपनाए जाने के पक्ष में है। हालांकि मर्केल की क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी ज़्यादा बदलावों के पक्ष में नहीं बताई जा रही है। द ग्रीन्स और उदारवादी एफपीडी को भी उनके गठबंधन के भावी उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव।
लगता है आपने फोटोग्राफी में कोई डिप्लोमा किया है?
जी नहीं, डॉक्टरेट।
डॉक्टरेट?
तुम्हें मुझसे ऐसे बात करने का कोई हक नहीं है। रेडिएटर तो ठीक है, कार्बोरेटर भी ठीक है, क्या पंगा? ओए, तेरा पंचर है।
जाने भी दो यारों, ये उस फिल्म का नाम है जिसे भारतीय सिनेमा की महान फिल्मों में शुमार किया जाता है। आपने जो संवाद सुने ये इसी फिल्म से है। हंसाते गुदगुदाते बड़ा कटाक्ष करने वाली इस फिल्म का निर्देशन किया था कुंदन शाह ने। कल 69 बरस की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। कुछ बरस पहले कुंदन शाह ने अपने संघर्ष, अपने सिनेमा और अपने साथियों को लेकर बीबीसी से लंबी बातचीत की थी। हम दिन भर में वो बातचीत आपको सुनवाएंगे। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे की भी होगी, लेकिन शुरुआत एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। कैटलोनिया की स्पेन से आज़ादी के खिलाफ आज हजारों लोग सड़कों पर उतरे। बीते रविवार को कैटलोनिया की स्थानीय सरकार ने जनमत संग्रह कराया था। आज के मार्च के आयोजकों का कहना था कि वो उस खामोश बहुमत का हिस्सा है जो अलगाव की मांग को खारिज करता है। एक रिपोर्ट के साथ मोहम्मद शाहिद।
नारे लगाते, स्पेन के झंडे लहराते, बार्सिलोना की सड़कों पर मार्च करते हजारों लोग। ये लोग कैटलोनिया को स्पेन से आज़ाद घोषित करने की योजना का विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतरे। कैटलोनिया में बीते हफ्ते स्थानीय सरकार ने जनमत संग्रह कराया था। जनमत संग्रह में 43% वोटरों ने हिस्सा लिया था और इनमें से 90% ने कैटलोनिया की आज़ादी का समर्थन किया था। जनमत संग्रह के दौरान स्पेन की पुलिस ने कई मतदान पेटियों को जब्त कर लिया था। पुलिस की कार्रवाई में करीब 900 लोग घायल हुए थे, 33 पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई थी। कैटलोनिया के नेता कार्लस पुज्जेमोंट मंगलवार को स्थानीय समय के मुताबिक शाम 6 बजे स्थानीय संसद को संबोधित कर सकते हैं। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कैटलोनिया की संसद अगली बैठक में आज़ादी का ऐलान कर सकती है। हालांकि स्पेन के प्रधानमंत्री मारियानो रखाय ने कहा है कि कैटलोनिया की आज़ादी के ऐलान का कोई प्रभाव नहीं होगा। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वो क्षेत्र की स्वायत्तता को निलंबित करने की संभावना को भी खारिज नहीं कर रहे हैं। उन्होंने इस संकट के समाधान के लिए किसी भी तरह की मध्यस्थता की संभावना को भी खारिज कर दिया है। स्पेन और कैटलोनिया की एकजुटता के समर्थन में बार्सिलोना में निकाले गए मार्च में शामिल प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वो स्पेन को टूटते नहीं देखना चाहते हैं।
Hombre, hemos venido aquí porque, a ver, queremos esto. Queremos la unidad de España y Cataluña.
मार्च में शामिल रामोन सांचेस कह रहे थे कि हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हम स्पेन और कैटलोनिया की एकजुटता चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा विभाजन हो। वो अलग चीजें चाहते हैं, लेकिन उन्हें इससे कुछ भी बेहतर हासिल नहीं होगा। एक अन्य प्रदर्शनकारी लुइस पेरेज ने कहा कि मैं दूसरे लोगों की राय का सम्मान करती हूं, लेकिन कानून तोड़ने का सम्मान नहीं किया जा सकता है। एकजुट होकर स्पेन की सरकार से कहना चाहते हैं कि इसे रोकिए। शनिवार को मैड्रिड में स्पेन की एकता के समर्थन में रैली निकाली गई थी। इस बीच कैटलोनिया में जारी राजनीतिक अस्थिरता के बीच कारोबारी इस क्षेत्र को छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं।
रिपोर्ट सुना रहे थे मोहम्मद शाहिद। अगली खबर भारत के गुजरात से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे के दौरान अपने गृहनगर वडनगर पहुंचे। यहां उन्होंने विकास परियोजनाओं का ऐलान किया, साथ ही बीजेपी सरकारों के विकास पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस पर पलटवार भी किया। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
जब अटल जी की सरकार थी 15-17-18 साल पहले, तब जाकर के हमारे देश में हेल्थ पॉलिसी बनी थी, आरोग्य की पॉलिसी बनी थी। उसके बाद 10 साल तक ऐसी सरकार आई जिसको विकास के प्रति नफरत थी, लोगों की सुखाकारी के प्रति संवेदनशीलता नहीं थी। हमारे देश में टीकाकरण 1985 से चल रहा है। हमने इसको जन आंदोलन में परिवर्तित करने का प्रयास किया है। आने वाले 4 महीने तक हर महीने 7 दिन ये टीकाकरण का मूवमेंट चलेगा।
ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द। दरअसल हाल में कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी गुजरात के दौरे पर थे। राहुल ने बीजेपी के विकास के दावों पर सवाल उठाए, उन्हें सोशल मीडिया पर भी समर्थन मिला। मोदी ने अपने दौरे पर उन्हें ही जवाब देने की कोशिश की। इस कोशिश में मोदी कितना कामयाब हुए, मैंने स्थानीय पत्रकार प्रशांत दयाल से अहमदाबाद में फोन पर संपर्क किया और यही सवाल किया।
मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहली बार विकास के मुद्दे को लेके पूरी भाजपा और खुद नरेंद्र मोदी जी पहली बार सत्ते में आए हैं और बैकफुट पे आके खड़े हैं। पूरे देश में जो चुनाव हुए 2014 में लोकसभा के चुनाव, जिसमें गुजरात मॉडल और गुजरात के विकास की बात की गई, लेकिन ये विकास को अभी गुजरात के लोग ही हजम करने को तैयार नहीं है। और उसी मुद्दे को, यानी गुजरात के लोगों के मुद्दे को राहुल गांधी और कांग्रेस ने उठाया। अब मोदी जी बैकफुट पे है और लोगों को ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि भाजपा के कारण उनकी जिंदगी में बदलाव आया, लेकिन लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि अब विकास वाला मुद्दा फिर से उनकी जिंदगी को बदल सकता है।
क्या आपको बड़नगर या बरूच से इस तरह के कोई संकेत मिले हैं?
मैं पहली बार देख रहा हूँ कि गुजरात में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे और उसके बाद जब प्रधानमंत्री हुए, उनके दौरे जब जब गुजरात में हुए तो गुजरात में एक उत्सव का माहौल था, उनके स्वागत के लिए गुजरात तैयार रहता था। लेकिन पहली बार गुजरात में उनके दौरे के दौरान जहां भी उनकी सभा हुई, वहां लोगों की प्रत्यक्ष रूप से नाराजगी भी दिखाई दी। नरेंद्र मोदी ने अपने गांव वडनगर में जाके जिस स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की थी, वो जमीन को चरण स्पर्श किया, वो स्कूल को जाके उन्होंने उसकी मिट्टी अपने सिर पे चढ़ाई, तो लोगों ने सोशल मीडिया पे उस चीज का भी मजाक करना शुरू कर दिया और उसको नरेंद्र मोदी का नाटक बताया गया। उसके बाद जब नरेंद्र मोदी भरूच में गए, जो दक्षिण गुजरात में आया हुआ एक शहर है, वहाँ भी लोगों की काफी नाराजगी ये थी कि जहाँ कॉटन रिसर्च सेंटर है, जहाँ पे कॉटन की फसल खड़ी थी, वो फसल पे बुलडोजर घुमाया गया और वहाँ पे नरेंद्र मोदी की सभा हुई। और भरूच में नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी में मछुआरों ने अलग प्रकार से विरोध प्रदर्शन किया और 15,000 मछुआरों ने अपनी नाव पे काले झंडे लहरा के मोदी के विकास का विरोध किया। तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि गुजरात में नरेंद्र मोदी का विरोध होने की ये पहली शुरुआत है।
पहले राहुल गांधी के दौरे को काफी चर्चा मिली, अब जैसा आप बता रहे हैं नरेंद्र मोदी के दौरे पर विरोध के सुर दिखाई दे रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की कोई घंटी बज रही है गुजरात में?
गुजरात वो भाजपा के लिए एक लेबोरेटरी रही है, जो भी प्रयोग गुजरात में हुए वो देश में सफल हुए। लेकिन नरेंद्र मोदी की जो होम पिच है, जहां से भाजपा ताकतवर हुई और देश में पहुंची, वो वहीं से अब खतरे की घंटी बजनी शुरू हुई है। कांग्रेस गुजरात में काफी सालों से पैरालिटिक थी, कांग्रेस ये स्थिति में ही नहीं थी कि वो नरेंद्र मोदी या भाजपा का विरोध कर पाए, लेकिन एक स्वयंभू लोगों में एक जो विरोध खड़ा हुआ है, अब उसकी अगुवाई कांग्रेस कर रहा है। लगता ऐसा है कि कांग्रेस की स्थिति सुधर रही है, लेकिन जनमत भाजपा के विरोध में शुरू हो चुका है।
ये थे पत्रकार प्रशांत दयाल। और अब बात कुंदन शाह की। फिल्मकार कुंदन शाह ने जाने भी दो यारो और कभी हाँ कभी ना जैसी उम्दा फिल्में बनाई, टीवी के लिए नुक्कड़ और वागले की दुनिया जैसे यादगार सीरियल बनाए। वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका काम अमर हो चुका है। हमारे सहयोगी मणिकांत ठाकुर ने कुछ बरस पहले कुंदन शाह से लंबी बातचीत की थी, आप भी सुनिए ये बातचीत।
फिल्मों में जब आपका प्रवेश हुआ, कैसा आपने अनुभव किया था कि कुछ क्या करने जा रहे हैं?
मुझे कुछ करना था, क्या करना था वो पता नहीं था। मैं सोच रहा था क्या मैं लेखक बनूं, क्या कवि बनूं, लेकिन लैंग्वेज पे इतनी मास्टरी नहीं थी। और कुछ ऐसा मौका मिला कि फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन की मैंने, लेकिन वो भी एक एक्सपेरिमेंट लेवल पे किया था। और मैंने बोला ये 3 साल एकदम मेहनत करके देखते हैं कि कैसे डायरेक्टर बना जाए। तो वहाँ से मैंने अपने आप को अंदर से टटोलना शुरू किया, जो सारी इन्फ्लुएंसेस है वो अचानक मैंने बाहर फेंक दी। और मैं अपने आप क्या हूँ, क्योंकि एक अंदर आपकी दुनिया होती है,
रचनाकार की हैसियत में आ गए तब।
हाँ, रचनाकार को ढूंढने की हैसियत। तो फिर जो कॉमेडी, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था कॉमेडीज की तरफ। जब मैंने अपने आप को टटोलना शुरू किया तो अपने आप थोड़ा कॉमेडी आने लगा उसमें।
तो ये संतोष आपको कब मिला कि ह्यूमर के जरिए आप कुछ कर पाए हैं, ऐसा किस फिल्म में, किस रचना में आपको लगा?
देखिए, ह्यूमर ऐसी चीज है ना कि चैपलिन भी, कोई भी, वो तो एक्टर है, वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो सोच सकते हैं। मैं तो सिर्फ डायरेक्टर हूँ इस लेवल पे। लेकिन कोई ऐसा ग्रामर नहीं है ह्यूमर के, आप बोल सकते हैं कि मैं हर बार सक्सेसफुल रहूंगा।
30 साल पहले जब जाने भी दो यारो आपने बनाई, उस समय भी यही आपके मन में चल रहा था?
हमारी जो सेकेंड ईयर की फिल्म थी वो डायलॉग थी, जहाँ मैं उसके बाद इंस्टीट्यूट की फिल्म आती है डिप्लोमा, जब हम बाहर निकलते हैं 20 मिनट की फिल्म।
अच्छा, उस समय में डिप्लोमा आई थी आपकी?
तो वो डिप्लोमा बोंगा मैंने बनाई थी, वो मैंने कॉमेडी बनाई थी 20 मिनट की, साइलेंट फिल्म। नो डायलॉग।
अच्छा,
और बहुत गलतियां की है, लेकिन उसमें कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो आज भी मैं वो मुकाम पे नहीं पहुंचा। कुछ चीजों ह्यूमर में मैं बहुत पीछे हूँ उस फिल्म में, लेकिन उस फिल्म की पोएट्री बहुत जबरदस्त है। उसने मुझे एक थोड़ा हिम्मत दी कि हाँ चलो जन्म यार आप सोचो तो सही, आगे देखेंगे। और वो फ्रैंकली इतनी पागल फिल्म है, स्क्रिप्ट पे भी इतनी इनकम्प्लीट, हर लेवल पे अभी भी इनकम्प्लीट है शूट करने के बाद भी, तो वो एक कोशिश रही थी। लेकिन एक आपको हिम्मत देती है आपने, आपके पीछे जो आपने काम किया है, तो हर सीन ऑलमोस्ट एक अटेम्प्ट है।
और ये कार किसने बीच में पार कर रखी है? ओए भाई, ओ मिस्टर, ओ गुड आफ्टरनून पहलवान, क्या प्रॉब्लम है? लगता है गड्डी खराब हो गई हो तेरी। ओए क्या प्रॉब्लम, कौन सा मॉडल है? हाँ पोर्ट, मेरे पास ऑस्टिन है, ओल्ड इज गोल्ड, नया मॉडल है, फिर भी खराब कर ली क्यों?
कुछ ऐसे रोचक प्रसंग होंगे जो आपने चर्चा अब तक ना की हो?
हर रोज कुछ न कुछ होता था। मैं क्या बोलूं, क्योंकि लोग पहले दिन हमने शूटिंग की वो इनकम्प्लीट रह गई, सेकंड दिन इनकम्प्लीट, थर्ड दिन इनकम्प्लीट, मतलब अच्छा? और क्या है कि आपने शेड्यूल बनाया हुआ है कि एक दिन पार्क में शूट करेंगे, एक दिन बिल्डिंग के टेरेस पे शूट करेंगे, तो पार्क तो कम्प्लीट नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट दिन की परमिशन आ चुकी है, वहां से सामान पहुंच रहा है, तो आप तो टेरेस पे पहुंच गए, वो भी इनकम्प्लीट रह गया, फिर आप तीसरी जगह पे चले गए, वो भी इनकम्प्लीट रहा, तो 14-15 दिन तक तो यूनिट तंग आ चुकी थी। फिर एक ऐसी परीक्षा आई, एक हमको अलीबाग जाना पड़ा एक बंगलो, क्योंकि वो बंगलो बम्बई में ही दिखाना था, लेकिन बम्बई में कोई ऐसा बंगलो, सब पैसे नहीं थे हमारे पास, तो उस तरह का जो मैचिंग था उसका कॉस्ट ज्यादा था, तो हम अलीबाग चले गए, क्योंकि किसी दोस्त का वो बंगला था। तो वहां जब क्या शुरुआत हुई तो इतने केओस कि मैं तो हार गया, मैंने गिव अप कर दिया था। और फिर तब मेरे जो सुधीर मिश्रा हैं और पंकज कपूर हैं और बाकी के सब एक्टर्स ने ठान ले ली कि या तो मर जाएंगे, लेकिन इस बार इनकम्प्लीट नहीं छोड़ा। जो 2 रात का शेड्यूल था वो हमने 5 रातों में खत्म किया। मतलब इस तरह का पागलपन शूटिंग होता था कि पूरी रात शूटिंग करते थे, 2 बजे दोपहर में ब्रेक हुआ, तो मतलब कभी कभी 72-आवर शिफ्ट किए हम लोगों ने, और उन्होंने भी समझ लिया कि यार इसको खत्म करो। कोई हंस नहीं रहा था शूटिंग के टाइम, लेकिन सब अपने सुर में काम करते थे। नसीरुद्दीन शाह जो इतने सीनियर एक्टर हैं और उनको मैं, मेरी पहली फिल्म थी, तो सोचते थे कि बहुत मैथमेटिक्स फिल्म बनती है और ये कॉमेडी तो बिल्कुल नहीं बन सकती, और वो मुझे हर सुबह पूछते थे कि शॉर्ट डिविजन किधर है तुम्हारा। और शॉर्ट डिवीजन जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे तब तक शॉर्ट डिवीजन नहीं होता है। तो हम लोग सब मिलकर एक कोशिश कर रहे थे कि भाई ये फिल्म बनाए, तो इसका शायद कैओटिक मेथड से ही बनती थी और बनी उसमें, वो शायद उसी वजह से कुछ कुछ चीजें ऐसी आई हैं अंदर जो शायद मेथड से नहीं आती।
फिल्म मेकिंग के दौरान कभी कभी अचानक कुछ ऐसा लग जाता है कि अरे ये तो सोचा भी नहीं था, उससे बेहतर हो गया।
2 चीजों पे होता है, तो महाभारत कभी, क्योंकि महाभारत हमने शूट भी ऐसा किया है, कभी बीच वाला पोर्शन शूट किया, कभी एंड वाला पोर्शन शूट किया, क्योंकि कुछ एक्टर्स थे नहीं थे, तो जिस तरह लिखा था और एडिट करके आया है सामने उस तरह तो हमने शूट ही नहीं किया ना, तो जब वो एडिट होके आया तब मालूम पड़ा कि माय गॉड ये तो इस तरह का सीन है।
जाने भी दो यारों का पार्ट 2 आप बनाने की सोच रहे हैं, लेखन के स्तर पे वो काम पूरा हो गया है जैसा आपने कहा है, उसमें क्या खास आप दिखाना चाहते हैं?
जाने भी दो पार्ट 2 रवि बासवानी और नसीर और मैंने, हम लोगों ने तीनों ने मिलकर तय किया, जब हमारे पास एक प्रोड्यूसर साहब आया वो बोलिए कि अगर आप पार्ट 2 में इंटरेस्टेड हैं तो अब तो शायद वो मुमकिन नहीं होगा क्योंकि रवि जी नहीं रहे, लेकिन हमको मौका तो मिला एक स्क्रिप्ट लिखने का। और हम लोगों ने, मैंने नसीर भाई से और रवि जब वो थे तब मैंने कहा देखिए हम पार्ट 1 से नहीं बन जाएंगे, क्योंकि वहाँ उसको आप उठा के फेंक दो जनवर को, तो ही हम पार्ट 2 बना पाएंगे, क्योंकि अगर उसके जहन में रहेंगे तो हम बन जाएंगे कि नहीं ये करना है, वो करना है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, और पार्ट 2 क्यों बनाना है? तो मैंने कहा देखिए पार्ट 1 क्योंकि लोगों को इतना पसंद आया है, हमको एक लाइसेंस मिल रहा है फिर से एक पागलपन, लेकिन आज की स्थिति को जरूरत है, इसलिए ऐसा नहीं है कि चलिए एक शौक के लेवल पे एक बार और पागलपन करते हैं, लेकिन आज की जो स्थिति है, आज की जो कंडीशंस हैं, पॉलिटिकल कंडीशंस जो भी हैं, सोशल कंडीशंस, सारे आज के इश्यूज हैं, वो किस तरह से हम, वो मुझे कंपेल कर रहे हैं कि वो एक अलग लेवल पे कहा जाए, तो हमने सोचा कि हम वो दिखाएंगे। और पार्ट 2 का पूरा क्षेत्र हम लोगों ने बदल दिया, वो वहाँ हमने पूरी पॉलिटिकल फिल्म बना दी पार्ट टू। वहाँ वो पूरा प्लानिंग कमीशन आ जाता है जो बहुत मुश्किल हो जाता है। हम प्लानिंग कमीशन में पहुंच गए, वहाँ मैडनेस की, वहाँ धमाके किए हैं क्योंकि अब वहाँ से हम गवर्न हो रहे हैं।
बिल्कुल।
लेकिन मैंने, हम लोगों ने बनाया इस तरह पार्ट टू बनाया कि जो फिल्म का अंत है, होता है कभी भी कोई भी, वो इस फिल्म का मिडिल बना दिया हम लोगों ने।
अच्छा।
तो क्योंकि आप क्या कहेंगे, करप्शन है, ये है, आज का ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो हम, तो वो हमने मिडिल बनाया, ये हो रहा है, हमने दिखा दी अलग लेवल पे पागलपन करके, एक जो हो रहा है उसको एक जबरदस्त पागलपन में वो एंड मिडिल में बता दिया। फिर क्या होना चाहिए उस पर फिल्म ले गए, एक अलग चीज बनाई, वो भी कॉमेडी में, कि क्या, लेकिन ये ठीक है, चलो आप, कल मुझे प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिल गया, कल मुझे सारे विश्व ने, सब सब जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पावर है उन्होंने मुझे बोल दिया जाके इंडिया को ठीक करो, तो क्या मैं कैसे करूंगा। तो एक अलग, बट उसमें कॉमेडी लेवल पे अगेन, तो सेकेंड हाफ वो एक यूटोपियन ड्रीम का पूरा, वो जो कॉमेडी लेवल पे पूरा दर्शन।
जी बताइए, अभी जो दौर है, अरबों में खरबों में बताया जाता है कि इतने खर्च हुए हैं अमुक फिल्म को बनाने में, और व्यावसायिकता जिस तरह हावी है उसका जो रूप दिख रहा है, तो अब क्या लगता है कि जो भी कलात्मक सोच वाले हैं, जो सौंदर्य बोध लेके फिल्म बनाना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि समाज की असली समस्या को, उसको यथार्थ को भी सामने लाके और लोगों के साथ इस तरह से घुल मिल के फिल्म बनाई जाए जो फिल्म में लोगों को अपनी लगे, आजकल है क्या कि तकनीक, पैसे की ताकत, ये तमाम चीज़ें उसमें लग रही हैं, आप जैसे फिल्मकार को क्या लगता है कि आप कहाँ टिक पाएंगे?
नहीं नहीं, मैं तो नहीं टिक पाया हूँ, लेकिन मैं कोशिश में हूँ कि मैं अपनी फिल्म बनाऊँ। और क्या होता है फिल्म इंडस्ट्री, आप समझ लीजिए, एक हाईवे है, बड़ा मेन रोड है ब्रॉडवे का, चमकदार चमकदार दुकान है, मॉल्स हैं, ये है वो है, तो हम उस रोड पे तो जा ही नहीं सकते क्योंकि हमारी सिनेमा वहाँ सांस नहीं ले सकती। तो हम किसी उसकी गली के अंदर की, गली के अंदर की छोटी गली जहाँ कोई रोशनी नहीं हो, वहाँ फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं, तो क्योंकि वहाँ वहाँ हम शायद टिक सकें। ये जो करोड़ों अब्जो लग रहे हैं वो अलग लेवल पे लग रहे हैं, क्योंकि इसमें स्टार सिस्टम बहुत हावी है। कोई भी बजट होता है मेरे ख्याल से कम 2/3 बजट उसका स्टार ले जाता है, और कॉर्पोरेट क्योंकि पैसे का खेल हो गया है। सिनेमा इज अ प्रोडक्ट, और पॉपकॉर्न मूवीज जो बोला जाता है इसलिए उसको, कि आप खाइए और घर जाके भूल जाइए उस फिल्म को, उसको कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए एक नया वर्ड आया है टाइम पास, कि भाई क्या है फिल्म, तो बोला टाइम पास है।
तो आपको भरोसा है कि दर्शक अभी भी आप जैसा सोच रहे हैं, या आप जिस तरह आपने कहा कि उस रोड से नहीं गली से निकल के भी कुछ चीज़ें बनाई जा सकती हैं, उसके लिए दर्शक हैं?
है, क्योंकि जानवी और वहाँ से ही बनी है, गली के अंदर की फिल्म है वो, तो मेरे ख्याल से वो आप उसको देखिए, इमेजिनेशन सिनेमा, मेरा सिनेमा ऑफ इमेजिनेशन में ज़्यादा जोर है, कि जहाँ इमेजिनेशन आपको उस दुनिया में ले जाती है जहाँ आप कभी नहीं जा सकेंगे, कोई कमर्शियल फिल्म आपको ले जा नहीं सकती, क्योंकि ये इसमें मैं फेल भी हो सकता हूँ और वो रिस्क नहीं ले सकते, आप समझ रहे हैं, क्योंकि इसमें मैं ऐसी ऐसी चीजें करूंगा तो मैं कभी गिर भी जाऊंगा, तो कभी ऐसे उड़ूंगा कि उसका कोई जवाब नहीं होता, लेकिन वो है, वो गेम का वही एक है। तो जहां तक प्रेक्षक हैं ऐसी फिल्मों के, वो भरे पड़े हैं, शायद वो प्रेक्षक आपको 5 साल के बाद मिले, 10 साल के बाद मिले, वो बात अलग है, और कुछ इमीडिएटली भी मिले, तो वो उसका प्रेक्षक तो है। मैं कभी ऑडियंस को दोष नहीं दे सकता, क्योंकि ऑडियंस इनोसेंट है। हम कहते हैं ये ऑडियंस को चाहिए, ऑडियंस ये कभी नहीं कहती कि हमें ये चाहिए, अगर उनको ये मालूम होता तो वो घर बैठ के वो बना लेते हैं। तो ऑडियंस तो वही है कि जो सब एक्सेप्ट करती हैं और इनोसेंट लेवल पे एक्सेप्ट करती हैं, उनका टेस्ट आप चेंज कर सकते हैं, उनको आप आगे ले जा सकते हैं, उनको उनकी उनके अंदर एक ऐसी जिज्ञासा पैदा कर सकते हैं कि वो और अलग लेवल का हर टाइम एंटरटेनमेंट मांगती हैं और उस तरह से कर सकते हैं।
तो ये जो टेलीविज़न की दुनिया है, उसमें आप क्या मानते हैं कि उसके ज़रिए भी जो आप बड़े पर्दे पर दिखाना चाहते हैं वहाँ भी दिखा सकते हैं, और उस तरफ आपका भी कोई रुझान है?
टेलीविज़न डेफिनेटली एक अलग, ये डिफरेंट लेवल पे आप बना सकते हैं फिल्में, लेकिन टेलीविजन वो इंडिया में, हमारे हिंदुस्तान में वो काम नहीं कर रहा है। वो इतना TRP लेवल पे वो हो गया है कि, और इतना प्राइवेटाइज हो चुका है, और जो पब्लिक है जो दूरदर्शन का है वो न होने के बराबर उस स्थिति में पहुंच गया है। तो टेलीविजन से मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो इतना प्राइवेट लेवल पे वो इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, क्योंकि वो क्यों दो घंटे की फिल्म भी बनाने की कोशिश करेंगे जहाँ उनको आधा घंटा सीरियल बनाने में, जो हर रोज दिखा सकते हैं, जो एक दिन में शूट हो सकता है, दो घंटे की फिल्म तो 12-15 दिन लगेंगे, और वो बोलेगा या 15 दिन ऑडियंस हुक कहाँ होगी, वो तो एक बार दिखा दी, तो वो उनके कैलकुलेशन और उनकी जो वो हैं TRPs और उसमें, तो मुझे नहीं लगता कि वो प्राइवेट चैनल्स में कोई आज उम्मीद है इस तरह का क्रिएटिव सर्ज होने की, लेकिन वो आ सकती हैं तो इंटरनेट पे अभी वो एक खुल रहा है, इंटरनेट पे आप 5 मिनट की फिल्म भी कर सकते हैं, 15 मिनट भी कर सकते हैं, तो इंटरनेट पे मुझे ज़्यादा विश्वास है कि वहाँ शायद अलग, क्योंकि अभी मीडियम बदल रहा है, अब फिल्में बदल रही हैं, अब अमिताभ बच्चन के साथ भी ऐसे कैमरा से शूट हो रही हैं जो आप और मैं घर में यूज़ करते हैं, उनके साथ फिल्म बन रही है, और कैमरा मतलब मैं फोटोग्राफी को या फोटोग्राफर कैमरामैन को ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अलग लेवल अभी मीडियम चेंज हो रहे हैं, नए अभी बहुत सी फिल्में डिजिटली शूट हो रही हैं, वो उसका कॉस्ट अलग लेवल पे चलता है, तो मैं आने वाले वक्त जो है उसमें क्रिएटिविटी इतनी बढ़ जाएगी, बट अलग लेवल पे बढ़ेगी, वो थिएटर में आपको देखने को नहीं मिलेगी, कहीं और देखने को, जो आपके शायद मोबाइल पे देखने को, अभी ऐसा थोड़ी है कि आप थिएटर पे जाके आप फिल्म देखो, लेकिन मुझे आपको 5 मिनट, अगर मैं आपको 5 मिनट की अच्छी एंटरटेनिंग फिल्म देता हूँ तो आप यहाँ से रेलवे स्टेशन जाते जाते वो देख लेंगे, तो और आप उसके 2 रुपये दे देंगे, 4 रुपये दे देंगे वो 5 मिनट के, तो वो शायद उस वक्त आ जाए, वो वक्त आए।
बहुत मज़ा आया आपसे बात करते हुए, बहुत शुक्रिया।
थैंक यू।
कुंदन शाह ने साफ तौर पर कहा कि फिल्म इंडस्ट्री एक हाईवे है, लेकिन हम छोटी सी गली में फिल्म बनाते हैं, लेकिन दर्शक इसी गली में बार बार आना चाहते थे। कुंदन शाह से ये बातचीत मणिकांत ठाकुर ने करीब 5 साल पहले की थी, और अब रुख खेल के मैदान का। आदेश जी मौजूद हैं खेल की खबरों के साथ, क्या है खबरें?
जी वात्सल्य, वैसे तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2020 मैचों की सीरीज खेली जा रही है, जहां कल भारत ने जीत के साथ आगाज किया, लेकिन ऐसा लगता है कि इन दिनों भारत में खेले जा रहे फीफा अंडर 17 विश्व कप में भी 2020 जैसा ही खेल नजर आ रहा है, क्योंकि आज देखिए, आज 2 मैच जो अभी तक समाप्त हो उसमें 12 गोल हुए, इंग्लैंड ने चिली को 4-0 से मात दी, तो उधर फ्रांस ने न्यू कैलेडोनिया को 7-1 से हराया। ऐसा लगता है कि दिवाली जो कि बहुत नज़दीक है, एक सप्ताह बाद ही
गोल चल रहे,
तो दे दनादन गोल फुलझड़ी की तरह हुए, और जिस टीम पर 7 गोल हो जाएं, यानी ठीक है फुटबॉल में ऐसी जीत होती है, लेकिन इस तरह की उम्मीद नहीं थी, लेकिन इंग्लैंड ने दिखा दिया 4-0 की जीत हासिल कर कि वो कितनी ज़बरदस्त तैयार से आई है। उनके कुछ खिलाड़ी बहुत बड़ी बड़ी लीग में खेल रहे हैं, लेकिन कल सबकी नज़रें होंगी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पर, जहां भारत का सामना कोलंबिया से होगा।
पहले मैच में भारतीय टीम
3-0 से हार चुकी है, उधर कोलंबिया भी अपने पहले मुकाबले में घाना से 1-0 से हार चुकी है। दरअसल भारत पर अपनी ही मेज़बानी में खेले जाने वाले इस विश्व कप में ये भी दबाव है कि उनके खिलाड़ी अगर जीत हासिल ना भी कर सकें तो भी कम से कम कोई गोल तो करके दिखाएं, तो काफ़ी दबाव भारत पर ज़रूर होगा, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि अच्छा मैच खेला जाएगा। और आज ही ग्रुप एफ में इराक का सामना मेक्सिको से होगा, ये भी एक काफ़ी ज़बरदस्त मैच माना जा रहा है।
बहुत शुक्रिया आदेश जी, वक्त विदा लेने का हो रहा है, लेकिन पहले मुख्य समाचार एक बार फिर सुन लेते हैं कुलदीप मिश्र से।
बीबीसी समाचार। कैटलोनिया के स्पेन से आज़ादी के ऐलान के आसार से पहले हज़ारों की संख्या में लोग इसके विरोध में और स्पेन की एकता के पक्ष में सड़कों पर उतरे हैं और स्पेन के झंडों के साथ बार्सिलोना की ओर बढ़ रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह की कंपनी के टर्नओवर को लेकर उठ रहे सवालों पर केंद्रीय रेल मंत्री और पार्टी के नेता पीयूष गोयल ने सफाई दी है। उत्तर कोरिया के शीर्ष नेता किम जोंग उन ने अपनी छोटी बहन को सत्तारूढ़ पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी है। अब से थोड़ी देर बाद क्यूबा के बड़े मार्क्सवादी नेता रहे चे गुएरा की 50वीं बरसी पर होने वाले यादगार समारोह में हजारों लोग हिस्सा लेंगे। चीनी प्रशासन का कहना है कि वह बीते 5 साल में कम्युनिस्ट पार्टी के निचले दर्जे के 13 लाख नौकरशाहों को सजा दे चुके हैं। बीबीसी समाचार।
दिनभर में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे अजित सारथी, फेसबुक लाइव आप तक पहुंचाया ब्रजेश मिश्र ने। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।